वो वेश है जो उल्टा और सीधा नहीं हो सकता। बाकी शर्ट पैंट आदि दुनिया भर की जो चीज़ें हैं उनको कभी उल्टा पहन लेता व्यक्ति, कभी सीधा, अंधेरे में ऐसा हो जाता कभी उल्टा सीधा, लेकिन ये वो वेश है दिगंबर मुद्रा कि जो कभी उल्टी या सीधी नहीं होती, जो है सो है, बस सहज मुद्रा, यथा जात मुद्रा। तो निर्वेश ही जिसका वेश है वो साधु की मुद्रा है, कोई और वेश नहीं है वो। वो वेश यानी कोई ड्रेस नहीं है वो, विदाउट ड्रेस। क्या अद्भुत बात है, और इस बात का समर्थन जैनेतर महर्षियों ने किया है। एक ऋषि भर्तृहरि हुए हैं गुजरात में, सौराष्ट्र में उनके कई गीत काठियावाड़ी भाषा में लोग गाते हैं। उन्होंने 3 शतक लिखे हैं और कुछ विद्वानों का कहना है कि वो 3 शतक अगर कोई पढ़ ले तो गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे शतक है वो। उन 3 शतकों में एक तो श्रृंगार शतक है, एक नीति शतक है और तीसरा वैराग्य शतक है। वैराग्य शतक में उन्होंने 2 काव्य दिगंबर साधुओं के ऊपर से लिखे हैं। वहां पर वो लिखते हैं, एकाकी निःस्पृह शांत पाणिपात्रो दिगंबर कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। अपने इष्ट देवता शंकर महादेव से वो प्रार्थना करते हैं कि हे शंभु, वह दिन कब आएगा जब मैं भी जंगलों में एकाकी विचरण करने वाला निर्ग्रंथ दिगंबर जैन साधु बनूंगा और पाणिपात्र, हथेलियां ही जिनके लिए बर्तन स्वरूप है भोजन ग्रहण करने के लिए। कौन साधु है जो हथेलियों में भोजन करते हैं, केवल निर्ग्रंथ जैन साधु है। और कर्म निर्मूलन अक्षम, जड़ से कर्म को उखाड़ फेंकने में सक्षम कब बनूंगा। शंकर जी से एक अन्य मत के साधु ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं वो साधु कब बनूंगा। इससे आप महिमा अंकित कर लो कि दिगंबर जैन साधु की क्या अलौकिक महिमा है। ज्ञानानव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने लिखा है, अलौकिक महोवृत्तम ज्ञानिनः केन वर्ण्यते, अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। इन ज्ञानी साधुओं की महिमा का वर्णन अलौकिक है, कोई कर नहीं सकता शब्दों से इनका वर्णन, इनका जीवन ही अलौकिक है। अहो वृत्तम अलौकिकम, अलौकिक है इनका आचरण, क्योंकि अज्ञानी जिस परिस्थिति में कर्मबंध बांधता है उसी परिस्थिति में ये महाराज, ये मुनिराज संसार से मुक्त हो जाते हैं। भगवान राम जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय क्या थे बाहरे वातावरण, पढ़ा है आपने कभी पद्म पुराण में, उनके बाहर का पूरा वातावरण विषय कषायों से भरपूर था। अगर कोई अज्ञानी जीव होता उनके स्थान पर तो क्या करता, कर्मों का बंध बांधता, लेकिन वो ज्ञानी जीव थे, उन्होंने अंदर राग उत्पन्न नहीं होने दिया। राग नहीं हुआ तो बंध नहीं हुआ, बंध नहीं हुआ तो मोक्ष हुआ। भाव मोक्ष तो हो ही जाता है केवल ज्ञान प्राप्त करते समय, फिर द्रव्य मोक्ष बाद में होगा अघातिया कर्मों को नष्ट करके। तो ये आचरण होता है अलौकिक। तो इस प्रकार यहां पर ये जो गाथा है इसमें बड़ी भयानक बात कह रहे हैं आचार्य कार्तिकेय स्वामी कि पाप कर्म के कारण एक राजा भी गंदे स्थान का कीड़ा बन जाता है, मल का कीट। और तथ्य वे कुणई रही, और फिर उसके आगे की कथा सुन लो कि वो राजा मरकर वहां कीड़ा तो बन गया लेकिन उस अपवित्र वस्तु में राजा को प्रेम हो जाता है कीड़ा बनने के बाद, यानी उस गंदगी से उसकी प्रीति हो जाती है। पेख मोहस महापम, बोले देखो मोह की महिमा कैसी विचित्र है। हे भव्य जीवों, हे संसारी प्राणियों, आचार्य कहते हैं कि देखो मोह की महिमा। मरने वाला था राजा, मुनिराज से पूछता अवधिक ज्ञानी मुनि से कि मेरा भविष्य बताओ। मुनि बोलते हैं 7 दिन बाद तेरा मरण होगा। कैसे होगा मरण? वज्रपात से। मरकर क्या होगा मेरा? तो बोले मरकर तेरा तिर्यंच गति में जन्म होगा। क्या बनूंगा? बोले गंदे स्थान का कीड़ा। इसकी पहचान क्या? बोले कि बिजली गिरेगी, बस यही पहचान है। बिजली गिरेगी और तेरी मौत होगी, यही पहचान समझ ले तुझे। जो बता रहा हूं अब अपने ज्ञान से बता रहा हूं, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। राजा को लगा कि बात हो सकता है सही हो। मौत की बात कोई भी बोल दे, ऐसी मजाक में बोल दे कि भाई देखो तुम ऐसे ऐसी झूठ, तुम्हारे नाखून देखकर लगता है कि 1 महीने जियोगे, वो 1 महीने तक टेंशन में रहेगा वो। भले उसने मजाक कर दी हो, कुछ भी ना हो उसके नाखून, तो भी वो 1 महीने तक टेंशन में रहेगा। मौत की बात सुनते ही लोगों का हृदय घबरा जाता है। अब राजा 7 दिन बाद सही में बिजली गिरती और मरता है, और उसी स्थान पर, वो जो स्थान बताया था मुनिराज ने, वहीं पर कीड़ा बनता है। लेकिन मरने के पहले अपने बेटे से बोल गया प्रीतिंकर से कि देख प्रीतिंकर, मुझे कीड़े बनने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, उनने तो कह दिया है महाराज जी ने, अगर बन जाऊं तो तू मुझे मार डालना। बोले वहां पर कीड़ा मत रहने देना। बोले अब लड़का गया उस अपवित्र स्थान पर, तो वहां सही में वो कीड़ा था, दुर्गंध में। लड़का ऐसे नाक पर कपड़ा रख करके जाता है, देखता है ऐसे बिल्कुल वैसा ही कीड़ा, सफेद रंग का कीड़ा। तब फिर पिता के आदेश का पालन करने के लिए वो उसको मारने की कोशिश करता है, और मारने की कोशिश करता है तो वो कीड़ा और अंदर चला जाता है उसमें, गंदगी में। प्रीतिंकर और प्रयास करता है लेकिन वो मरना नहीं चाहता। तब प्रीतिंकर को वैराग्य हो जाता है, वो उन्हीं मुनिराज के पास जाकर के कहता है कि मुनिवर क्या बताऊं मैं, आप तो दिव्य ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसी ऐसी घटना हुई है, मुझे संसार में अब कोई सार नजर नहीं आता, आप मुझे आत्मकल्याण का मार्ग बतलाइए। तब मुनिराज कहते हैं कि हे राजकुमार, तेरा पिता कीड़ा नहीं बनना चाहता था, इसलिए सोच रहा था कि कीड़ा बन जाऊं तो मुझे वहां से जल्दी छुटकारा दिला दो, लेकिन जो जीव जिस योनि में चला जाता है, जिस गति में चला जाता है, वो चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, नरक आयु को छोड़कर बाकी सब जगह जीव जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो उसको वहां प्रेम हो गया, अब उसको उसको तेरे से प्रेम नहीं, अब तेरे से द्वेष है। तू उसको मारने जा रहा है ना, उसको तकलीफ हो रही है, क्यों मार रहा है मेरे को? वो भूल गया अपना पिछला जन्म, वो भूल गया कि मैं राजा था, लेकिन अब वो मरना नहीं चाहता। और तू यदि अपना जीवन सुधारना चाहता है तो जिनेंद्र भगवान के मार्ग को अंगीकार कर, इधर उधर की बातों में मत रह, विषय कषायों को छोड़, और आचरण मार्ग से ही जीवन का उद्धार हो सकता है। बातों से कभी किसी का कल्याण न हुआ न होगा, कल्याण भावों से होता है, बातों से नहीं। इसलिए तू अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए ऐसे नौकर्म से बच, ऐसे निमित्तों को छोड़ दे जिनके निमित्त से अपनी कमजोरी के कारण अपन अपने भाव बिगाड़ लेते हैं, उनसे दूर हो जा। उस राजकुमार ने दीक्षा ले ली, और कथा सुनने वाले पता नहीं क्या करेंगे, ये हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। एक बार इसका पाठ कर लेते हैं। दुखीय कम वसादो रायावी असुई कीड़ो होदी तथे वयकुणैरै एकह मोहस्समाहप्पम। दुष्कृत कर्म के वश से अर्थात पाप के उदय से राजा भी अशुचि कीटकः होदी भवति, अपवित्र कीड़ा बन जाता है, गंदे स्थान पर जीव जंतु की पर्याय में चला जाता है। और विशेष बात तो यह है कि तथ्येव रई गुणी, वहीं पर प्रीति करने लग जाता है, उसी पर्याय में उसको राग हो जाता है। पेख मोहस माहप्पम, मोह की महिमा को देखो कि जिस शरीर में जीव चला जाता है वहीं रम जाता है, भले वहां न जाना चाहता हो, जाने से पहले न जाना चाहता हो, लेकिन जाने के बाद रम जाता है। अब और क्या स्थितियां बनती है संसार में वो बतलाते हैं। पुत्तो विभाव जाओ सोचिए भाव वि देवरो हो दी, माया हो दि सवित्ति जननो वि हो दि भत्तारो, एयम मि भवे एदे संबंधा होन्ति ए जीवस, अन्न भवे किं भण्णै जीवाणं धम्मरहिदानं। पुत्तो भी भाऊ जाओ, पुत्र भाई बन जाता है। सोचिए भाव भी देवर हो दे, और वही भाव है भाई देवर हो जाता है। माया हो दी सवित्ति, माँ जो होती है माता, वह सवित्री बेटी बन जाती है। जननों भी होती भत्तारों, और जनक जो है जनन जन्म देने वाला पिता, वह भत्तारो होती पति बन जाता है। एदे संबंधा एय जीवस एयम्मी भवे होती, ये सारे संबंध ये सारे रिश्ते एक जीव में घटित हो जाते हैं, एक जन्म में एक जीव के एक भव में इतने रिश्ते बन जाते हैं। तो अन्न भवे किम भण्णई, जो धर्म रहित जीव हैं उनके अन्य अन्य भवों में कौन से रिश्ते नहीं बनते होंगे, क्या बताएं। स्वामी कुमार कार्तिकेय मुनि बोलते हैं कि जब एक जन्म में एक जीव के इतने रिश्ते हो जाते हैं तो फिर अनेक जन्मों में धर्म रहित जीवों के कितने रिश्ते बनते होंगे, क्या कहना। एक जीवस से एक प्राणिनः, इसकी टीका देख रहे हैं हम। एक जीवस से एक प्राणिनः, एक जीव के अर्थात एक प्राणी के, एकस्मिन् नैव भवे, एक ही भव में जन्मनी, एक ही जन्म में, एते पूर्वोक्ताः संबंधा, ये जो पूर्व कथित गाथा में बतलाए गए संबंध हैं, वे भ्रातृ पुत्रादि रूपेण संयोगा, भाई बेटे आदि के रूप से जो संयोग बने हैं वे भवन्ति जायन्ते हो जाते हैं। ते के वे कौन से संबंध हैं, पुत्र है तनुज है, पुत्र का संबंध, तनुज माने अपना बेटा, भ्रात्रा बांधवो, भ्रात्रा भ्राता माने भाई, बांधव जात अभूत, यानी बेटा जो था वो भाई बन गया। सो भी च भ्राता देवर भवती, और वही भाई देवर बन जाता है। माता जननी, क्या लिखा, सपत्नी भर्तृभार्या भवति, माँ जो है जननी है वह सपत्नी जननी का विशेषण सपत्नी कैसे बनेगा, भर्तृभार्या भवति, भर्ता का अर्थ होता है पति और उसकी भार्या यानी पत्नी बन जाती है। जनकोपि च पितापि, जनक यानी पिता, पिता भी भर्ता वल्लभो भवति, पति बन जाता है। अन्य भवे पर भवे धर्म रहितानाम किम भण्णते, फिर धर्म रहित जीवों के अन्य भव में, एक भव में तो इतना हो गया हिसाब किताब, तो अन्य भवों में किम भंडित, क्या कहा जाए, किम कथ्यते थे, क्या कहा जा सकता है। अब इसमें वो कथा जो है वो सुना रहे हैं, 18 नातों की कथा, संसार अनुप्रेक्षा की सबसे जबरदस्त असरदार ये घटना है। वसंत तिलकायाह वेश्यायाह, वसंत तिलका नाम की जो वेश्या थी उसके, धनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टांत। वसंत तिलका, धनदेव और कमला, इन तीन जीवों के ये सारे दृष्टांत हैं। उक्तंच कहा भी है, अब वो कथा प्रारंभ कर रहे हैं। मालव देशे, मालव नाम का देश है, आजकल मालवा बोलते हैं। उज्जयिन्याम राजा वृषभसेन, विश्वसेन, उज्जैनी नगरी में राजा विश्वसेन राजा थे, श्रेष्ठी सुदत्त, और वहाँ का जो सेठ था, नगर सेठ सुदत्त था। षोडश कोटि द्रव्य स्वामी, 16 करोड़ मुद्राओं का स्वामी था, करोड़पति था। वसंत तिलका वेश्या, और उस नगरी की जो वेश्या थी वसंत तिलका, सा सुदत्तेन गृहवासे धृता। तो सुदत्त द्वारा वह गृहवासे धृता, अपने घर में निवास करने के लिए धारण की गई। सा गुरुविणी सती, कंडू काश श्वासादि रोगाक्रांता तेन त्यक्ता। जब वो गुरुविणी हुई माने गर्भवती हुई, तो उसको कंडू यानी खुजली होने लगी, काश माने खांसियाँ, खांसी चलने लगी, श्वास आदि के रोग हो गए। तो इतने रोगों से आक्रांत जब हो गई वो वेश्या, तो सुदत्त ने जो करोड़पति सेठ था उसका त्याग कर दिया। स्वगृह सा वसंत तिलका बाल युगम पुत्रम पुत्री प्रसूता। वो वसंत तिलका अपनी अपने घर चली गई, और उसने अपने घर पर बाल युगलम जुड़वा बच्चों को, जिसमें से पुत्रम पुत्री, एक पुत्र था और एक पुत्री थी, जन्म दिया। उद्विग्नया रत्न कम्बलेन आवृत्य दक्षिण दिशि प्रतोल्यान सा कमला पुत्री मुक्ता। फिर क्या हुआ, वो उद्विग्न थी, उद्विग्न का अर्थ परेशान होता है, परेशान थी क्योंकि बीमारियां तो लगी गई थी उसके शरीर में। तो उसने क्या किया, रत्न कम्बलेन आवृत्य, रत्न कम्बल से ढांक कर, आवृत करके। रत्न कम्बल का अर्थ मालूम है क्या, मखमल, मखमल से लपेट कर दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा में प्रतोल्याम, प्रतोली का अर्थ होता नगर का जो मुख्य द्वार है, वो 4 दरवाजे होते थे पहले नगरों में, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और उत्तर द्वार। तो उसने दक्षिण द्वार पर सा कमला, वो जो कमला नाम की पुत्री थी उसकी, उसको मुक्ता छोड़ दिया। प्रयागवासी सुकेतु सार्थवाहीन सुप्रभावी सुप्रभा प्रियाया दत्ता। और प्रयाग माने इलाहाबाद जिसको आजकल कहते हैं ना, वहाँ का निवासी जो सुकेतु नाम का सार्थवाह था, उसने उस बच्ची को अपनी पत्नी सुप्रभा के लिए प्रदान किया। तथैव उत्तर दिशि प्रतोल्याम पुत्रो धनदेवो मुक्तः। और उसने उत्तर दिशा, अब देखो दक्षिण में तो बेटे बेटी को छोड़ा, और फिर उत्तर दिशा के जो प्रतोली यानी द्वार था वहां पर पुत्रो धनदेवो मुक्तः, धनदेव नाम का जो बेटा था उसको छोड़ दिया। अब देखो ये तीन जीवों की कथा है, ऊपर आया था ना 5वीं पंक्ति में, वसंत तिलकाया वेश्याया धनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टांत, ये तीनों के दृष्टांत है। धनदेव मुक्त, अब धनदेव को उसने जब छोड़ा तो मुक्त सन, वो छोड़ा गया जो धनदेव है। साकेत पुरस्थ सुभद्रेण सुव्रताया दत्त, साकेत माने अयोध्यापुरी का जो सुभद्र नाम का कोई मनुष्य था, उसके द्वारा सुव्रतायाः दत्ता, सुव्रता नाम की कोई स्त्री थी, उसके लिए प्रदान किया गया। पूर्वोपार्जित पापात्, पूर्व काल में उपार्जित किए गए पाप के कारण तयोः धनदेव कमलयोः दंपतित्वं जातम्, धनदेव और कमला इन दोनों का विवाह हो जाता है। पूर्व पाप के उदय से दोनों की शादी होती है। धनदेव उज्जयिन्यां व्यापारार्थं गतः, धनदेव उज्जयिनी के उज्जयिनी नगरी में व्यापार के लिए चला जाता है। तया वसंत तिलकया वेश्या सह लुब्धः लुब्धः छपा तो उस वसंत तिलका नाम की जो वेश्या थी, उसके द्वारा वह लुब्ध माने लुभा लिया जाता है, माने वो रिश्ते में उस वेश्या का बेटा था। अब उसको भी नहीं मालूम, इसको भी नहीं मालूम, एक तो भाई बहन की शादी हो गई और फिर अब जब ये उज्जैनी गया तो फिर वो वेश्या इसको आकृष्ट करती है, लुभा लिया जाता है। ततस्तयोर वरुण नामा बालो जाता, फिर इन दोनों के संयोग से वरुण नाम का बालक पैदा होता है। कमलया श्री मुनिदत्त पृष्ठ, कमला जो थी, जो इसकी बहन थी और पत्नी बन गई थी, वो श्री मुनिदत्त, श्री मुनिदत्त से पूछती है। तेन श्री मुनिदत्तेन सर्व संबंध कथित, फिर उन श्री मुनिदत्त जो साधु थे उनके द्वारा सर्व संबंध कथित, सारा संबंध कह दिया जाता है। कथम तत्, वो कैसा था संबंध? तो बोले उज्जैन्याम विप्र सोम शर्मा, उज्जैनी में एक ब्राह्मण था सोम शर्मा, भार्या काश्यपी और उसकी पत्नी काश्यपी थी। तयोः पुत्रौ, उनके दो बेटे अग्निभूति सोमभूति नामानौ द्वावपि बहिः पठित्वा आगच्छत भ्याम है, सही बात है, ठीक है। तो उनके जो दो पुत्र थे ब्राह्मण के, अग्निभूति और सोमभूति, ये दोनों बाहर पढ़ करके आगच्छत भ्याम, जिनदत्त पुत्र मुनेह मातरम जिनमत्यारिकाम शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य, जिनभद्र श्वसुर मुनेश्च वधूटिका सुभद्रारिकाम शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य द्वाभ्याम भ्रातृभ्याम उपहास्यं कृतम। देखिए क्या हुआ, घटना घट गई एक, कि उज्जैनी में जो सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी काश्यपी ब्राह्मणी से दो बेटे हुए थे, एक अग्निभूति और दूसरा सोमभूति। ये दोनों बाहर पढ़ने गए और पढ़ करके आते समय इन दोनों के द्वारा जिनदत्त पुत्र मुनि हैं मातरम जिनमत्यारिका, जिनदत्त नाम के जो मुनि थे वो जिनमती आरिका के पूर्व संबंध से पुत्र थे। तो क्या हुआ, उन मुनि ने शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य, वो आरिका पूछ रही थी कि महाराज श्री शारीरिक स्थिति कैसी चल रही है, आपका स्वास्थ्य वगैरह कैसा है, ये देखा। और जिनभद्र श्वसुर मुनेश्च वधूटिका सुभद्रारिकाम शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य, फिर जिनभद्र नाम के एक ससुर मुनि थे, मतलब पूर्व रिश्ते की अपेक्षा, ये सब रिश्ते जो है संसार में इसी रिश्ते से लोग बातचीत करते हैं कि ये महाराज कौन से हैं, तो बोले कि उनके फलाने फलाने हैं, ये व्यवहार की ऐसी भाषा चलती है। वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज जो है वो तो सब रिश्तों को ठुकरा करके तपस्या में तत्पर हुए हैं, लेकिन जो लोकवार्ता होती है उसमें इसी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो एक जिनभद्र नाम के मुनि थे, वो सुभद्रा नाम के आर्यिका के पूर्व रिश्ते से ससुर लगते थे, ससुर। तो उस आर्यिका ने इनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, शरीर का समाधान है, यानी तपस्या वगैरह करते हैं तो पूछते हैं ना कि उपवास की साता है क्या, तो इसी प्रकार उनने पूछा होगा। तो ऐसे दोनों को इस प्रकार देख करके द्वाभ्याम भ्रातृभ्याम उपहास्यम कृतम, दोनों भाइयों ने हंसी उड़ाई कि साध्वियां साधुओं से शरीर संबंधी वार्ता पूछ रही है। दोनों हंसने लगे और फिर तरुणस्य वृद्धस्य तरुणी धात्रा विपरीतम कृतम इति, तरुणस्य वृद्धा और वृद्धस्य तरुणी धात्रा विपरीतम कृतम इति, बोले धात्रा यानी ब्रह्मा ने ये संबंध उल्टा बना दिया, बोले कि जो बूढ़ा साधु है उससे जवान साध्वी बात कर रही है और जो जवान साधु है उससे बूढ़ी साध्वी बात कर रही है, ये ब्रह्मा ने उल्टा संबंध जोड़ा है। इस प्रकार इन दोनों ने इनकी हंसी उड़ाई। तयो तथोपार्जित कर्म वशात, इस तरह जो कर्म उपार्जित किया था इन दोनों उसके कारण कालेन उज्जैन्याम सोम शर्मा मृत्वा, मृत्यु के द्वारा उज्जैनी नगरी में सोम शर्मा मरण को प्राप्त होकर वसंत सेना सुता, वसंत सेना की बेटी बन गया। देखो पुरुष स्त्री बन जाता है मर करके, वसंत सेना की बेटी वसंत तिलका जाता, वसंत तिलका नाम की वेश्या बन जाता है। कौन? सोम शर्मा, ठीक है, जो उसका पिता था वो। और अग्निभूति सोमभूति द्वंद्वम, ये दो भाई थे ना, अग्निभूति और सोमभूति, ये दोनों मृत्वा मरकर तस्याह शिशु युग्मम, उसके जुगल बच्चे कमला धनदेव पुत्र पुत्री युग्मम यथा संख्यम जातम, कमला और धनदेव नाम के जुड़वा भाई बहन बन जाते हैं। काश्यपी, और जो काश्यपी इत्वरी का काश्यपी त्वरी, काश्यपी जो है वरुण शिशुत्वम प्राप्ता, काश्यपी जो इत्वरी थी, अब इत्वरी का अर्थ होता है दुराचारिणी, अनुवाद में पंडित जी ने ब्राह्मणी लिखा है क्या, लेकिन इत्वरी का अर्थ डिक्शनरी में ब्राह्मणी नहीं मिलेगा आपको, इत्वरी का अर्थ होता है दुराचारिणी। तो काश्यपी जो इत्वरी थी, वैसे थी तो ब्राह्मणी, वो उसी की पत्नी थी, वो वरुण शिष्यत्वम प्राप्त, वो वरुण नाम का पुत्र बन गई। इसमें आया था ना कथा में पिछले में, ये थोड़े नाम याद रखना पड़ते हैं, मतलब नहीं तो फिर कथा आगे पूरी गोल हो जाती है नाम भूल जाओ तो। पहले तो हम मतलब जब पढ़ते थे प्रथमा नियोग को तो हमें लगता था कि आचार्य कैसे नाम याद रखते हैं इतने सारे, पद्म पुराण में 700 नाम है। हाँ ठीक है, तो सही लिखा फिर। ब्राह्मण की पत्नी जो काश्यपी थी वो दुराचारिणी थी, इत्वरी शब्द आता है ना इसमें अतिचारों ब्रह्मचर्य के तत्वार्थ के 7वें अध्याय में रत्नकरण में इत्वरी नाम आता है। मतलब वो जो लड़का था धनदेव, उसका जब वहां संबंध हुआ तो इन दोनों से जो बेटा हुआ वो वरुण था, और वरुण जो था वो उस जन्म में इन दोनों की मां था, काश्यपी, सोमभूति और अग्निभूति की माँ काश्यपी तो थी। अब आगे पूरा मतलब हिसाब किताब जोड़ करके बताएंगे, आप चिंता मत करोगे। फिर आगे लिखते हैं, सर्वमेतत् श्रुत्वा जातिस्वरी भूत्वा अणुव्रतम लात्वा उज्जयिनीं गत्वा वसंत तिलका गृहं प्रविश्य पालनस्थं वरुणं आंदोलयति। अब क्या हुआ कि ये जो कमला थी